नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन पर तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे जाने वाली ट्रेन शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी आरवी रोड रागीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। उनका बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान श्री मोदी 15,600 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक मुकुल चंद्र माथुर ने कहा कि हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी, यात्रा के समय को कम करेगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगी।
वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए। जो आम आदमी को दृष्टि में रखते हुए अमृत भारत ट्रेन है, उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है उसमें काफी इजाफा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये इस क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वाणिज्य संपर्क के लिए ये एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि विकास से प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्ष तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। इन दलों के कार्यालयों का भी कोई अता पता नहीं है। देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। राज्य सरकार ने आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए 5,00,000 रुपए की तत्काल सहायता देने की घोषणा की है।
हर्षिल क्षेत्र में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों से आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर से कार्य किया जा रहा है। वहीं सेना के जवान लिमचा गाड़ में बेली ब्रिज बनाने के काम में भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
सिक्किम सरकार ने हर घर तिरंगा पहल को पूरे उत्साह के साथ मनाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों के बीच 1,00,000 राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जाएंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 12 अगस्त को गंगटोक के एमजी मार्ग से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इसके बाद मनन केंद्र में देशभक्ति के उत्साह से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विषयों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। गंगटोक के अलावा अन्य जिलों में भी तिरंगा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज और पर्यवेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। आज शेर दिवस है। गुजरात एशियाई शेरों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पोरबंदर के पास बरदा वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिकी और शेरों के विकास की दिशा में प्रगति कर रहा है। मोहन बागान सुपर जायंट 134वें डूरंड का फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में मोहन बागान ने डायमंड हार्बर FC को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।